नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से योना नबी की पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ भी मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है परमेश्वर की दया। तो आइए श्रोताओ, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रियों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से योना नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सबों ने देखा है कि योना, जिसे परमेश्वर ने नीनवे नगर में जा करके वहां के लोगों को संदेश देने के लिए भेजा, परंतु वह वहां से भागकर दूसरे देश की ओर निकल पड़ा। और तब हम जानते हैं कि जब वह समुद्र में था तो उसके साथ क्या घटनाएं घटी। मेरे प्रियो, इससे पहले कि आज हम सब आगे बढ़ें और उस अध्ययन पर ध्यान दें, आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से सहायता मांगे ताकि आज के अध्ययन के द्वारा भी हम अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम योना नबी की पुस्तक से अपने अध्ययन को करते हैं, हमारी विनती है प्रभु कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जो वचन आज हम सुनते हैं यह वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, हर एक से बोलने और बातचीत करने पाए। पिता परमेश्वर, यद्यपि कि हम दूर हैं, फिर भी आपके वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से जब हम करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि ये वचन प्रत्येक के जीवन में अधिकाई से कार्य करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन श्रोता मित्रों के लिए जो इन दिनों अपने जीवन में निराश और परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं। प्रभु जी, आप उनसे भी बोले और बातचीत करें, उन्हें अपनी शांति और आनंद प्रदान करें। आज के अध्ययन पर भी आप अपनी आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम इन दिनों योना नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि योना, जिसे परमेश्वर ने नीनवे नगर में जाकर के वहां के लोगों को संदेश देने के लिए भेजा, परंतु वह वहां न जाकर तर्शीश की ओर भाग रहा है। हम देखते हैं कि नाविकों ने परमेश्वर से क्षमा मांगकर योना को समुद्र में डाल दिया, क्योंकि समुद्र में तूफान आ रही थी। वहां परमेश्वर ने एक बड़ी सी मछली तैयार रखी थी कि वह योना को निगल ले और उसे नीनवे के तट पर उगल दे। इसी बीच योना ने परमेश्वर से जीवन दान मांगा और परमेश्वर ने उसे नवजीवन प्रदान किया। नवजीवन पाकर योना बदल गया और उसने परमेश्वर की स्तुति करके मन्नत मानी कि वह अवश्य ही नीनवे नगर में जाकर परमेश्वर का संदेश सुनाएगा। परमेश्वर ने योना की सुधि ली, क्योंकि योना की गवाही है कि उद्धार यहोवा ही से होता है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि योना समुद्र के अंदर मछली के पेट में 3 दिन तक रहा और तब उसे नीनवे नगर के तट पर उगल दिया गया। इन बातों के बाद अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। अध्याय 3, जिसका विषय है और एक अवसर देने वाला परमेश्वर। योना नीनवे पहुंचा, नीनवे के लोगों ने विश्वास किया, नीनवे विनाश से बचाया गया। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा कि इस अध्याय के अंदर में हम इन बातों को देखेंगे। हमारी प्रस्तावना में योना का गंतव्य स्थान नीनवे ही है और अध्याय 3 में भी उसका गंतव्य स्थान नीनवे ही है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये नीनवे नगर है, शहर है, जो असुरों की राजधानी है, और इस नगर में बहुत अधिक सताव था और इस स्थान के लोग बहुत अधिक पाप में डूबे हुए थे। और तब परमेश्वर ने अपने दास योना को उस स्थान पर भेजा ताकि वहां के लोगों को चेतावनी दे और उन्हें बताए कि 40 दिन के अंदर में परमेश्वर इस नगर को नाश कर देगा। इस बात को बताने के लिए परमेश्वर ने योना को भेजा, परंतु योना वहां ना जाकर दूसरी ओर भाग रहा था। तब हम देखते हैं कि समुद्र में तूफान आई और तब यह हुआ कि उसे पकड़कर समुद्र में फेंक दिया गया और तब मछली ने उसे निगल लिया और तब उसे नीनवे नगर में पहुंचने की बातें हो रही है। अब वह सूखी भूमि से उठा और उस नीनवे नगर की ओर बढ़ चला। उसने 3 अध्याय तक मछली के पेट में यात्रा की है और अंत में यथा स्थान में वह पहुंचता है। उस मछली ने उसे लौटाकर नीनवे के मार्ग पर किया, जबकि वह भागकर नीनवे के बजाय तर्शीश को जा रहा था। मेरे मित्रों, मैं इस अध्याय पर प्रभु यीशु के वचनों को लिखना चाहता हूं। लुका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, जैसा योना नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। मेरे प्रियो, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि और एक अवसर देने वाला परमेश्वर। योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। ध्यान दीजिए, लिखा है तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। एक बार किसी सभा के बाद एक स्कूल शिक्षिका ने मुझसे पूछा, होश में आने के बाद यदि योना फिर तर्शीश को चल पड़ता तो क्या होता। विद्यालय के शिक्षक मुझसे सदैव ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि मेरे पास उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं होते हैं। मुझसे किसी ने ऐसा प्रश्न कभी नहीं पूछा था। मैंने उससे कहा, ऐसा होता तो एक और मछली उसे लौटा लाती। मेरे प्रियो, ऐसा होने की संभावना नहीं थी, क्योंकि योना ने सबक सीख लिया था। अब वह नीनवे की ओर आगे बढ़ता है। उड़ाव पुत्र के बारे में भी यही प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि वह अगले वर्ष फिर कहता, पिताजी मैं दूर देश को जाना चाहता हूं, मेरे लिए आप व्यवस्था कर दें, क्या उसका पिता उसके लिए व्यवस्था कर देता? जी हां, क्योंकि वह उसका पिता था। परंतु मुख्य बात तो यह है कि वह गया नहीं, क्योंकि उसे सूअरों के बाड़े में रहना अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर की संतान पाप में गिर तो सकती है, परंतु पाप में पड़ी नहीं रहेगी। जी हां, मनुष्य पाप करता है, लेकिन वह वहीं पर बैठा नहीं रहता है। बाड़े में सूअर रहते हैं, पुत्र पिता के घर में रहता है। यह एक अति महत्वपूर्ण बात है। हम यहां पर देखते हैं जहां पर वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। हमारा परमेश्वर अवसर पर अवसर देता है। यह कैसी अद्भुत एवं मनभावन बात है। परमेश्वर आपको एक और अवसर ही नहीं, अनेक अवसर देता है। मुझे उसने कई दिन और कई बार अवसर दिए हैं। वह धीरजवंत एवं सहनशील है। वह नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। यदि आप उसकी संतान हैं, तो वह आपको थामे रहेगा। इसके विषय में आप निश्चिंत रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बार बार अवसर देता है ताकि आप उसकी निकटता में बने रहें। जिस प्रकार उसने इसराइलियों को बार बार अवसर दिया कि वे अपने मनों को फिराकर परमेश्वर की ओर लौट आएं, परंतु उन्होंने कई बार परमेश्वर का इनकार किया और उन्होंने उन्हीं कार्यों को किया जिसे उन्हें नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद परमेश्वर ने उन्हें अवसर दिया। मेरे प्रियो, आप जहां नौकरी करते हैं वहां आपको एक और अवसर नहीं दिया जाएगा। मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो बहुत बड़ी और सफल बैंक का उपाध्यक्ष है। मैंने उससे पूछा कि आपका कर्मचारी पैसों में घोटाला करके लापता हो जाता है और फिर एक दिन आकर आपसे क्षमा मांगता है और निवेदन करता है कि आप उसे एक और अवसर दे दें, एक मौका दे दें, तो क्या आप उसे एक और मौका या अवसर देंगे? उसने कहा, कदापि नहीं, बस उसका काम समाप्त हो गया। क्या यह एक महान बात नहीं कि परमेश्वर हमें एक और अवसर देता है, बार बार मुझे और आपको मौका देता है कि हम अपना सुधार कर सकें। परमेश्वर ने केवल योना पर ही ऐसा अनुग्रह नहीं किया। उत्पत्ति की पुस्तक में याकूब की कहानी को आपने पढ़ा है कि वह बार बार गलती करता रहा और परमेश्वर के लिए अपमान और लज्जा का कारण बना, परंतु परमेश्वर ने उसे त्यागा नहीं। जी हां, वह चतुर मनुष्य था और अपनी चतुराई पर ही जी रहा था। उसने अपने मामा के घर पर भी ऐसा ही किया। मामा जिसका नाम लाबान था, लाबान उससे भी अधिक चतुर था। अंत में याकूब लाबान के घर से भाग निकला। उसने लाबान और एसाव जो उसका बड़ा भाई था उसके भाई के साथ भी चाल चली थी। वह परमेश्वर की सेवा तो करना चाहता था परंतु उसका जीवन कैसा अप्रासंगिक था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के स्थान पर मैं होता तो उसे हटाकर किसी और को ले आता, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह उसे और एक मौका देना चाहता था। पनियल में परमेश्वर ने याकूब के साथ कुश्ती लड़ी। याकूब ने लड़ाई नहीं की थी क्योंकि वह तो दो खाइयों के बीच में था, एक ओर उसका भाई एसाव और दूसरी ओर उसका ससुर लाबान था। अतः वह तीसरी ओर से परेशानी मोल लेना नहीं चाहता था। उसे हराने के लिए परमेश्वर ने उसकी जांघ की नस दबा दी। याकूब ने देखा कि वह हार रहा है तो उसने परमेश्वर को जाने नहीं दिया और उससे आशीष मांगी। मेरे प्रियो, उस दिन से याकूब एक भिन्न मनुष्य हो गया। मिस्र में जब उसकी भेंट यूसुफ से हुई अर्थात उसके पुत्रों से हुई तो उसने एक सामान्य दादा के समान उन्हें अपना बड़प्पन या महानता नहीं दिखाई। उसने उनसे कहा, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 48 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ते हैं, वह दूत अर्थात परमेश्वर इन लड़कों को आशीष दे। अब वह कैसा दीन और परमेश्वर पर आश्रित जन बन गया है। इसी प्रकार दाऊद भी था। एक वृद्ध जन मेरे पास आकर ठट्ठे से कहने लगा, परमेश्वर ने दाऊद को अपने मन का मनुष्य क्यों कहा। मैंने पूछा, क्या आप उसे व्यभिचार और उरिया की हत्या करवाने के कारण उसे दोषी ठहरा रहे हैं। उसने कहा, ऐसा ही तो है। उसने बाइबल ठीक से नहीं पढ़ी थी। दाऊद को उसके पाप का कठोर दंड मिला था। जी हाँ, उसका अति प्रिय पुत्र अबशालोम, जिसे वह राजा बनाना चाहता था, वह भी मारा गया था। उसकी मृत्यु पर दाऊद बहुत रोया था। दूसरा शमूएल की पुस्तक 18 अध्याय उसके 33 पद में हम देखते हैं, लिखा है, हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता, हाय अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। मेरे प्रियो, वह कैसा दीन मनुष्य हो गया था। वह परमेश्वर पर आश्रित था। अब वह एक भिन्न मनुष्य था, बदला हुआ मनुष्य था। परमेश्वर ने दाऊद को दंड तो दिया परंतु जब उसने क्षमा मांगी तो उसका पुनरुद्वार भी किया। भजन संहिता 51 उसके 12 पद में लिखा है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। मेरे प्रियो, मैंने उस वृद्ध से कहा, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपको बहुत ही आनंदित होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा किया और उसे एक और अवसर दिया। हमारा परमेश्वर ऐसा ही है। वह आपको भी अवसर पर अवसर देता है। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है। वह आपके जीवन की हर एक बातों को जानता है और वह चाहता है कि आप भी उस अवसर को समझें और इस बात को जानें कि परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है और अपने पापों से पश्चाताप करके मन फिरा करके उसकी ओर लौट आएं। जब आप उसकी ओर लौट आएंगे तो निश्चय जानिए कि आप भी एक भिन्न व्यक्ति होंगे, एक दीन व्यक्ति होंगे। हम देखते हैं कि पत्रस ने प्रभु यीशु की संगति से इनकार किया था और जब उसने पत्रस को देखा तब उसकी आंखों में क्रोध नहीं, दया और करुणा थी। पत्रस बहुत रोया। मृतकोत्थान के बाद अर्थात मृतकों में से जी उठने के बाद वह पत्रस पर अकेले में प्रकट हुआ कि पत्रस अपनी गलतफहमी को दूर करे। मेरे मित्रों, यदि आप पाप में गिरते हैं तो सच्चे दिल से प्रभु के पास आकर उससे स्पष्ट शब्दों में बात करें। वह आपका त्याग नहीं करेगा, वह आपको स्वीकार करके फिर से अवसर प्रदान करेगा। हमारा परमेश्वर अवसर देने वाला परमेश्वर है, परंतु आप उस पाप में ही पड़े न रहें, अर्थात बार बार उस पाप को आप न दोहराएं, उससे मन फिराकर प्रभु की ओर लौट आएं। यूहन्ना मरकुस भी चूक गया था, वह प्रचारक नहीं था, वह घबरा कर घर लौट आया था। बरनबास तो उसे एक और अवसर देना चाहता था कि दूसरी प्रचार यात्रा में अपने साथ रखे, परंतु पौलुस ने स्पष्ट कह दिया कि वह उसे अपने साथ नहीं लेगा। परंतु आगे चलकर पौलुस को उसके बारे में अपने विचार बदलने पड़े थे। परमेश्वर ने मरकुस को ग्रहण किया था। दूसरा तिमोथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 11 पद में पौलुस उसके विषय में लिखता है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि वह मेरे लिए बहुत काम का है। मरकुस ने अंततः महान कार्य किया। क्या आप प्रसन्न नहीं हैं कि हमारा परमेश्वर अवसर देता है? जी हाँ, वह आपको और मुझे भी बार बार अवसर देता है ताकि हम उसकी निकटता में आ जाएं, अपने मनों को फिराकर उसकी निकटता में आ जाएं। मेरे प्रियो, एक बार मुझे अपने एक श्रोता से पत्र मिला। वह एक डॉक्टर था। उसने मेरे रेडियो कार्यक्रम पर योना का अध्ययन सुनकर मुझे लिखा, आपने कहा कि परमेश्वर एक और अवसर देता है, तो मैं पुनः प्रभु में आ गया हूं और यह पद मेरे जीवन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पद हो गया है। जिस कलीसिया में वह सदस्य एवं पदाधिकारी था, उस कलीसिया में कलीसिया की संपदा और पैसों को लेकर कुछ समस्या खड़ी हो गई थी और उसे निर्दोष होने पर भी दोष दिया गया था। वह उस नगर को छोड़कर किसी दूसरे नगर की ओर चला गया। अब वह आराधनालय के द्वार पर कभी नहीं जाता था, परंतु हमारा रेडियो कार्यक्रम वह प्रतिदिन सुनता था। रेडियो पर सुनकर कि परमेश्वर अवसर देता है, परमेश्वर अवसर देने वाला परमेश्वर है। उसने लिखा कि ये शब्द उसके लिए ऐसे थे जैसे रेगिस्तान में प्यास से तड़प रहे मनुष्य को शीतल जल मिल गया हो। उसने लिखा, यह मेरे लिए सबसे महान अर्थ रखता है। मैंने उसे पत्र में लिखा कि वह फिर से कलीसिया में सेवा करे, तो उसने उत्तर दिया कि वह कलीसिया में सदस्यता लेकर प्रभु की सेवा में है। मेरे मित्रों, परमेश्वर अवसर पर अवसर हमें देता है, क्योंकि वह महान है, वह प्रेमी है, वह दयालु है, वह अनुग्रहकारी है। मेरे मित्रों, योना की कहानी एक जीवित उदाहरण है कि परमेश्वर अपनी संतान को पाप में गिरने के बाद फिर अवसर देता है। उड़ाव पुत्र जब घर से लौटकर आया, तब उसके पिता ने उसकी ताड़ना नहीं की थी। पिता ने उसके स्वागत में भोज का आयोजन किया था। उसने अपने पुत्र को चूमा था। पिता ने उसे धक्के मारकर घर से नहीं निकलवाया। उसने अपने पुत्र को गले लगाया। यह कैसी महान और अद्भुत बात है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा ही परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जी हाँ, हम सबने पाप किया है। यदि परमेश्वर हम सबों को दंड दे, तो हम में से कोई एक भी जीवित नहीं रहेंगे। परंतु परमेश्वर हमें अवसर देता है कि हम उसके एकलौते पुत्र प्रभु यीशु पर, जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे बदले में क्रूस पर बलि हो गया, और उसने हमारे बदले में कोड़ों की मार सही और कीलों को अपने हाथों में ठुकवा लिया। वो परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है। वह मुझे और आपको क्षमा करना चाहता है। वह नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो जिसे उसने बनाया है। मेरे मित्रों, योना के जीवन में भी एक ऐसी ही घटना घटी। परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए उसे नीनवे नगर की ओर भेजा कि वहां पर जाकर उनके लोगों को प्रचार करे जो पाप में जीवन जी रहे हैं, ताकि मन फिराकर वे परमेश्वर की ओर लौट आएं। परंतु योना उस नगर को जाना छोड़कर दूसरे नगर की ओर भाग रहा था। और तब हम कहानी को जान चुके हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने मछली के द्वारा से निगलवा कर उसे नीनवे नगर के तट पर उगलवा दिया। और तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने योना को दूसरा मौका दिया, अवसर दिया, और वह जाकर उस नगर में परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है। परंतु आज मेरे और आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर दूसरा मौका देते हैं, ताकि हम अपने पापों से मन फिराकर, अपने बुरी आदतों से मन फिराकर परमेश्वर की उस सच्चाई पर, उस सत्यता पर अपने आप को ले आएं, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। और जब हम लौट करके आते हैं, उन बुराइयों को छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्रसन्न होता है। जिस प्रकार उड़ा पुत्र जब अपने घर लौटा तो पिता ने उसे गले लगाया, हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही प्रसन्न होता है, हमसे प्रेम करता है, हमारे जीवन में शांति और आनंद देता है। मेरे प्रियो, क्या आज आप उस महान परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, या आप पापमय जीवन जी रहे हैं? परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज आपको भी आगाह कर रहा है, आपको अवसर दे रहा है, ताकि आप अपने मनों को फिराकर परमेश्वर की ओर लौट आएं। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आपने इस बात को जान लिया है कि परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है, ताकि आप उसका लाभ उठा सकें और फिर से परमेश्वर की निकटता में आ सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
जिंदगी के सफर में